ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरद्विजे। मैं सब प्रथम आप लोगों से कन्नड़ भाषा नहीं जानने की वजह मैं हिंदी भाषा में ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें। एक बार आज से करीब करीब 5000 वर्ष पहले दिव्य क्षेत्र नमिषारण्य में भारतवर्ष के सब ऋषि महर्षि 18,000 ऋषि महर्षि एकत्रित हुए थे और उसमें सौनकादि ऋषियों ने महर्षियों ने सुत गोस्वामी से कहा, ये आप महाराज सुखदेव गोस्वामी के शिष्य, अपने वेद शास्त्र उपनिषद रामायण पुराण इत्यादियों का सार जो श्रीमद् भागवत नहीं है आप लोगों ने उनसे सुना है। कलयुग आ गया है, इसमें मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या ही उपद्रव। कलयुग में आयु बहुत छोटी हो जाएगी और लोग बड़े दुर्भागा होंगे और सुमंद मतयो अच्छे के लिए कर्म करेंगे बुरा हो जाएगा और तरह तरह के पाप है, पुनः पुनः जन्म मरण बुढ़ापा बुढ़ापे तक का जो दुख है ये सब भोगना पड़ता है। इसलिए आप सबका साथ ब्रूहितन में जयात्मा संप्रसीदत, आत्मा कैसे प्रसन्न होती है आप कृपा करके बोलिए। श्री सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी की चरण वंदना है और वंदना करने के बाद में बतलाया, सवै पुंसो परो धर्मो जतो भक्ति खजे अहे तो क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। इसी को रूप गोस्वामी ने अन्नाभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म अनार्पितम आनुकुलीन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तात्पर्य क्या, कृष्ण को प्रिय लगे ऐसी तन मन वचन और इसके अतिरिक्त भावना से उनकी चेष्टाओं से अनुकूल को ग्रहण का प्रतिकूल रूप में जो चेष्टाएं होती हैं उसको भक्ति कहते हैं। उसमें भी अनु नयन तैलमयी तेल तैल धारा मत विच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में लगने वाली हरि गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में हो, इसको भक्ति कहते हैं। किंतु उत्तमा भक्ति नहीं कहते। उत्तमा भक्ति उसी को कहते हैं जिसमें अल्टा विलासिता शून्य, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा हमारे हृदय में न हो, लौकिक कोई भी भावना न हो। और वह भक्ति कर्म ज्ञान योग से आच्छादित न हो। मनुष्य जन्म रहने पर कर्म की जरूरत है, किंतु कर्म के द्वारा भक्ति होती है, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा नहीं तो वो कर्म से ढक जाए। ज्ञान योग तपस्या इत्यादि से भक्ति नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए भक्ति की कृपा से ही भक्ति होगी। यहां तक कि लिखा गया है शास्त्रों में भगवान की कृपा से या उनके भक्तों की कृपा से भक्ति होती है, ये भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। भगवान यदि किसी को भक्ति देते हैं और किसी को नहीं, तो उनमें उनमें निरपेक्षता समदृष्टता का अभाव होता है। और उत्तम भागवत भी वैसे ही नहीं दे सकता है, केवल मध्यम अधिकारी भक्त जिसके अधिकार में है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा सब मध्यम, यही भक्त मध्यम अधिकारी दे सकता है भक्ति। इसलिए यदि कोई उत्तम गुरु भी होता है तो मध्यम श्रेणी में उतर कर मध्यम भक्त बन करके दीक्षा हरियाम दे करके जगत का उद्धार करता है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए ये भक्ति है। नाउ कैन यू ट्रांसलेट
ಆನಂದ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ
और उसमें भी तीन नाम संकीर्तन स्मरण और श्रवण। पहले श्रवण तब कीर्तन इसके पश्चात में स्मरण। इन तीनों भक्तियों में भी नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। चाहे तो एक सेकंड में सारे विश्व ब्रह्मांड को लेकर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की नई सृष्टि कर सकते हैं। कृष्ण बड़े अहेतुकी दयालु हैं। वे सर्वगुण संपन्न है इसलिए उन्होंने अपने 16 नामों में अपनी सारी शक्तियां दे दी। वे जन्म जन्मांतरों के जन्म मृत्यु के कष्ट से हमें छुटकारा दे सकते हैं और साथ ही वे कृष्ण प्रेम भी ये नाम दे सकेंगे। हरिनाम का कलयुग में विशेष महत्व है, उसमें भी उपनिषदों में कलिसंतरण उपनिषद में बतलाया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। चलते चलते फिरते उठते बैठते टहलते हुए जैसे भी नाम हो, जितना भी ऊंचा स्वस्थ होगा तो पशु पक्षी कीट पतंग घास पेड़ पौधे भी सुनेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कोई परिश्रम नहीं नाम करने में है। और संप्रदायों में हमारे मुस्लिम भाई लोग कितने बार 100 बार उठक बैठक दंडवत ये सब कितना करते हैं, हमें वो भी नहीं। बस नाम संकीर्तन होने के साथ ही साथ संसार से उसकी मुक्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ में नाम करना चाहिए। हमारे सनातन गोस्वामी ने भक्तों को भक्ति के तारतम्य से पांच भागों में विभक्त किया। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। भक्ति के तारतम्य से जब विचार किया जाता है तो ध्रुव की भक्ति सकाम भक्ति है। उन्होंने राज्य के लिए, अपने पैतृक संपत्ति के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए भगवान की उपासना की और 6 महीने में ही उनको प्राप्त कर लिया। भगवान ने 36,000 वर्ष का साम्राज्य पृथ्वी का दे दिया है और इसके बाद में संसार त्याग करने के बाद में अपना ध्रुव लोक जो किसी को नहीं दिया, जिसकी परिक्रमा सप्तर्षि और सूर्य सभी लोग करते हैं वो दिया, किंतु मरते समय में शरीर छोड़ते समय में अपनी माता को स्मरण किया। गए कहाँ, इसी ब्रह्मांड के भीतर एक ध्रुव लोक है जिसकी सप्तर्षि और सूर्य इत्यादि सभी लोग जिसकी परिक्रमा करते हैं उसी लोक को दिया। गोलोक वैकुंठ या और सब जगहों में नहीं दिया। इसे श्रेष्ठ बतलाया कि ज्ञानी भक्त सकाम नहीं है। प्रहलाद महाराज सकामी भक्त नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो तो उन्होंने कहा कि मैं बनिया नहीं हूं जो आपसे कुछ मांगू, इसलिए आपकी भक्ति नहीं की। यदि कोई हमारी मांगने की इच्छा हो हृदय से निकल जाए, फिर भी कहा जब पिताजी का उद्धार हो जाए तो वो भी हो गया है। जिस कुल में एक वैष्णव होता है, उत्तम वैष्णव होता है, उसकी 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाती है और जिसमें मध्यम भक्त होता है 14 और जिसमें साधारण भी कनिष्ठ भक्त भी हो उसकी 7 पीढ़ियां के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। नृसिंह भगवान गोदी में लेकर के रोने लगे, मुझे आने में विलंब हो गया। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी निष्काम भक्त हैं। वे समस्त जगत में भगवान को और भगवान में अपने इष्ट देव को देखते हैं, इसलिए ये इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज अपने समस्त अंगों से मन से भगवान का स्मरण करते, कानों से भगवान की हरि कथा सुनते, हाथ से ठाकुर जी का मंदिर अपने आप मार्जन करते, दंडवत प्रणाम उनको करते अष्टांग भाव से। इस प्रकार से अपने 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करते।
ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन
अच्छा ट्रांसलेशन
সম্বন্ধে কিছু বলবো
হনুমান সম্বন্ধে বলে দিবেন।
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ವರ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂತ ಬೇಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾನು
तो प्रहलाद महाराज ने ना ज्ञानी भक्त है तो ऐसे ही करे ये प्रहलाद महाराज की तरह उत्तम अमृत पचन का भक्त अमृत महाराज का शुद्ध भक्त अमृत महाराज भगवान के नाम पे ये गड़बड़ नहीं ला आज इतने कट्टा है ना भगवान के नाम पर इन बंद रखने वाला जिन्हें गड़बड़ नहीं ला अमृत महाराज जो नवरी का भक्ति है कि सत्य को बाहर पड़ गए थे किवी इन का भगवान से ना कटा कर नवरा निकाल कैसे ने नवरा मार दो आगे कई इन का भगवान से ना दिया बंदे ने ले अवर जेवर इन मार दो भगवान से ना देवता ने ले भगवान से दक्षिण के पारे ऐसे इन मार दो मार का ठीक है और अन्य का बच्चे ने नवरी का भक्ति है कि छोड़ कर दो ये भगवान से ने ते अमृत महाराज ने बुद्ध भक्त हरे
कृष्ण वरिष्ठ महाराज जी से भी प्रेमी भक्त हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, संसार में कोई भी इनका मोह नहीं है, भगवान की बिना सेवा के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। एक समय राम के छोटे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों ने मिलकर के विचार किया। दिन रात हनुमान उनकी सेवा करता रहता है और हम लोगों को कोई सुजोग नहीं मिलता, इसलिए हम लोग सभी सेवाएं दिन और रात का बांट लें और इसी सेवा इसकी कोई भी सेवा न दी जाए। मिलकर के दिन और रात का अपना हिस्सा बटा लिया। हनुमान जी ने सोचा कि हमको कोई नहीं सेवा दे रहे, सेवा के बिना तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बात हमको करो, एक सेवा मैं करूंगा, जब राम को जम भाई आएगी तो मैं चुटकी बजाया करूंगा। अच्छा ठीक है, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, घर के बाहर में रहकर और हनुमान जी चटकी बजाने लगे और राम को जम भाई चप्पर जम भाई आने लगी, खाना पीना सब कुछ उनका बंद हो गया। अंत में राम ने कहा अरे भाई उसको कुछ सेवा दे दो, नहीं तो तुम लोग कोई भी सेवा नहीं कर सकते। तब उन्होंने हनुमान की जो सेवा थी सब सेवा दी। एक समय सीता जी श्रृंगार भवन में थी, सिंदूर लगाया और कपड़े पहन करके बाहर में निकले। हनुमान जी ने पूछा ये माता जी तुम कहां गई थी? उन्होंने कहा जब मैं श्रृंगार कर रही थी, अभी दरबार में जाना है, राम के पास में बैठना है, तो ये क्या लगा लिया सिंदूर? तो उन्होंने कहा जी ऐसा लगाने से पति सौभाग्य वो सौभाग्यवान होता है और पत्नी सौभाग्यवती होती है। अच्छा ठीक है,
लंबा जीवन आयु मिलता है
और पति की लंबी आयु मिलती है। हनुमान जी ने सोचा ठीक है, सीता जी श्रृंगार भवन से निकली और हनुमान जी श्रृंगार भवन में पहुंचकर सारे शरीर में सिंदूर लगा लिया और राजसभा में आए। अरे हनुमान जी तुमने क्या किया? तो मैंने सिंदूर लगाया है। क्यों? इसलिए लगाया यदि आयु बढ़ती है राम की इससे लगाने से, तो मैंने सारे शरीर में ही लगा दिया। देखिए कैसे राम जी की सेवा करते हैं, उनका वाहन बन करके अपने कंधे पर बैठा करके राम लक्ष्मण को ले जाते हैं। राम लक्ष्मण के लिए वनवास के समय में फूल मल कंद इत्यादि सभी लेकर के उनको खिलाते थे। लंका युद्ध के समय में अपने पूंछ का परकोटा बना करके रक्षा करते थे। जब लक्ष्मण को सेल लगी तो लंका से झट पहुंच करके
किसन वैद्य को ले आए।
फिर उसके परामर्श से
गंधमादन पर्वत
पर जहां पर की संजीवनी बूटी मिलती थी उसको उखाड़ ले आए एक हाथ पर। इस प्रकार से वो जड़ी बूटी से बना करके जब औषधि दी तो लक्ष्मण की सेल शक्ति। इस प्रकार से राम की सब सेवा
जो नागपास में बांधा तब जाके गुरु को बुला लिया।
इसके बाद में इनसे भी श्रेष्ठ है पांडवगण हनुमान जी। राम के साथ में एक पलंग पर नहीं बैठ सकते, उनको आलिंगन नहीं कर सकते, अपना जूठा नहीं खिला सकते, किंतु पांडव लोग ऐसे हैं। पांडवों ने अपने प्रेम से कृष्ण को वशीभूत कर लिया और अर्जुन और
कृष्ण
दोनों एक ही पलंग पर सोते हैं। कृष्ण का पैर अर्जुन के छाती से होते हुए दूसरे तरफ में जाता है और उसको रुक्मिणी सत्यभामा दबाती है, चामर इत्यादि करती है, और दूसरे तरफ कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती से जाता है और उसको
सुभद्रा
और
द्रौपदी
जी चमक ढुलाती है और अर्जुन के रोम रोम से कृष्णा कृष्णा कृष्ण निकलता है। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन के साथ में कर दिया। इतना यह देखे तो भी कभी कभी युद्ध में जब विश्व रूप देखते हैं अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु आप विश्व नियंता हैं, आपको मैंने जो सखा कहा है भाई कहा है युद्ध में आपको सारथी बनाया और जैसे कहता था वैसे किया, आप हमें क्षमा कीजिए। इसलिए इनसे श्रेष्ठ उद्धव है, सब समय कृष्ण के मंत्री हैं, सखा है, भाई है, सेनापति है, बंधु है, सब कुछ है, किंतु ये उद्धव भी वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर गोपियों के पास में गए। कृष्ण ने भेजा उद्धव तुम जाओ जहां मैंने प्रेम की पाठ सुना है सीखा है, वो प्रेम की पाठशाला में विद्यालय तुम जाओ, वहां पर श्रीमती राधिका जी प्रिंसिपल हैं और ललिता विशाखा इत्यादि सखियां एक एक डिपार्टमेंट की ही हैं। गए किंतु गोपियों ने पाठशाला में विद्यालय में भर्ती नहीं किया। उद्धव से पूछा उद्धव बतला सकते हो, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ प्रेम और एक स्वार्थ प्रेम। स्वार्थ प्रेम का यह उदाहरण है जैसे वेश्या किसी को प्यार नहीं करती, अर्थ से उनका प्यार है, जब किसी को सब कुछ ले लेगी निकाल देगी अपने पास नहीं रखेगी। चिड़िया घोंसले में रहती है, घोंसला जल जाए बन जल जाए तो पक्षी वहां नहीं रहेगा, विद्यार्थी शिक्षा करने के लिए जाता है गुरु आश्रम में, शिक्षा समाप्त हो गई, अब गुरु की तरफ में मुख फेर करके नहीं देखेगा। भौरा फूलों पर रस लेता है और रस लेने के बाद में फिर दूसरी जगह उड़ जाता है। बताओ उद्धव, कृष्ण से हमारा प्रेम निस्वार्थ था, यह कैसे टूट गया? उद्धव जी सिर खुजलाने लगे और विचार ही नहीं कर सके ये कैसे हुआ। तब उद्धव जी इस विद्यालय में दाखिल नहीं हुए। उद्धव जी वृंदावन की एक लता गुल्म
खास
कुछ भी नहीं बन सके। प्रार्थना की, आशा महो चरणे युषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लतौ सजीना जगद त्वजन स्वजन आर्य पतंच हित्वा भेजे मुकुंद पदवेंग सुति भेंग। मैं वृंदावन में कहीं एक गुल्म लता भी हो जाऊं जिसमें गोपियां चले तो उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर। वंदे नंद ब्रजे स्त्री राम पादरे अभिक्षण सा जासाम हरि कथो गीत पुअनाथ भो नत्र। ओ नंद बाबा के जितने हैं घर में उन सभी को हमारा बार बार प्रणाम है। उनकी एक चरण धूली की मैं वंदना करता हूं जिसके विरह के गान से सारा विश्व धन्य हो गया। ट्रांसलेशन,
प्रेमी भक्त प्रहलाद भक्त हनुमान प्रेमी भक्त हनुमान
तखन होते
अनेक हनुमान और बाल ब्रह्मचारी ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ರಾಮನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಹೋದರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹನುಮಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಮರಣನೇ ಕಟ್ಟಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬೇಕಾದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಯಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿಂಧು ಏನಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇತ್ತ ಸಿಂಧುರವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತ್ತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹನುಮಾನ್ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ತುಂಬ ಸಿಂಧುರವನ್ನ ಬಳಿದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಿದು ಅವನು ಹನುಮಾನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಏನಿದೆ ಬೈ ತುಂಬ ಸಿಂಧುರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪತಿಗೆ ಆಯ್ದು ಜಾಯಿತು ಇರ್ತದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಯ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೈ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಅವನು ಹನುಮಾನ್. ಅವನು ಸೀತೆ ಕಳೆದಾಗ ಸೀತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವನು ಗಂಧರಾಜನ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂಜೀವಿನಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹನುಮಾನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಹನುಮಾನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಪಾಂಡವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆ ಸತ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಒಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆಟಿಗೆ ಮಲಗೋದು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರ ದೇವಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಪುರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಖ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಉದ್ದವ. ಉದ್ದವ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಯಿತು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉದ್ಧವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠಶಾಲೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಲಲಿತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಆ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರು. ಈಗ ವೈದ್ಯರು ನಿರಾಮಿಗೆ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಬ್ಬರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಕಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕೇ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಜವಾಗಿರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಪಿಯವರು ಕೃಷ್ಣನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಉದ್ದವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸಾಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಮ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವೃದ್ಧ ವೃದ್ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರ ಮಹಿಮ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಉದ್ದವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಿದ್ಧ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಗೋಪಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಫುಲ್ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಿಯರ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಲೆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಗೋಪಿಯರ ಪಾಡದೋಡಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಮನಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಡದೋಡಿಯನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣನೇ ಇನ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಶೀಭೂತ ಹೋಗ ಗೋಪಿಯೋ ಸೇ ಕಹ ನ ಪಾಯ ಹಂ ನಿರವದ್ಯ ಸಂಯುಜ ಸುಸಾಧು ಭಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಶಾಪಿವ ಮಾ ದುರ್ಜನ ಗೃಹ ಶೃಂಖಲ ಸಂಪೃಕ್ಷತತ್ವ ಪ್ರತಿಜಾಗ್ಸ. ಓ ಗೋಪಿಯೋ ಗೋಪಿಯೋ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೈಸಿ ಲಂಬಿ ಆಯು ಪಾಕರ್ಕೆ ಭೀ ತುಮಹಾರಾ ಋಣ ನಹೀಂ ಚುಕಾ ಸಕ್ತಾ. ತುಮನೆ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಪರಿವಾರ ಪತಿ ಸಬ್ ಕುಛ ಛೋಡ್ ಕರ್ಕೆ ಲೋಕ ಧರ್ಮ ವೇದ ಧರ್ಮ ಸಭಿ ಕುಛ ಜಲಾಂಜಲಿ ದೇ ಕರ್ಕೆ ಹಮಾರೆ ಚರಣೋ ಭೀ ಆಯೆ ಮೈ ಕಿಸಿ ಕೋ ಛೋಡ್ ನಹೀಂ ಸಕ್ತಾ ಕೋಯಿ ಭೀ ಜೈಸಾ ಭೀ ಜೇ ಯಥಾ ತಾಂ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಮೈ ಸದಾ ಜೋ ಕುಛ ಜೋ ಕೋಯಿ ಜಿಸ್ ರೂಪ ಮೇ ಭಜನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಮೈ ಭೀ ಉಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಇಸ್ಲಿಯೇ ನಹೀಂ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ. ಇನ್ ಗೋಪಿಯೋ ಸೇ ಭೀ ರಾಧಾ ಜೀ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈ ಅನಾರಾಧಿತೋ ನೂನಂ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಶ್ವರ. ಯೇ ರಾಧಿಕಾ ಜೀ ರಾಜಲೀಲಾ ಸೇ ಜಬ್ಬಿ ಅಂತರ್ಧ್ಯಾನ ಹೋ ಗಯಿ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಉನ್ಕೋ ಮನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ಕೋ ಛೋಡ್ ಕರ್ಕೆ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ರಾಧಾ ಜೀ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರೇಮ ಹೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರೇಮ ಹೈ. ಹಮ್ ಲೋಕ ಯೋದಿ ಉನ್ಕಿ ದಾಸಿ ಹೋ ಸಕೆ ತೋ ಇಸ್ಕಿ ಚೇಷ್ಟಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಾಧನ ಭಜನ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ವೋ ಹೋಗಾ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಪಿಯೋ ಕೆ ಅನುಗತ್ಯ ಮೇ ಸೇವಾ ತಭಿ ಹೋ ಸಕೆ ಯಹಿ ಜೀವ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಪರಮಾರ್ಥ. ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಸತಾ ಹೈ ಮೈ ಕುಛ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಕಿ ಆಜ ಕುಛ ಲೋಗ ರೀತಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮಾನನೆ ಲಗೆ ಹೈ गुरु परंपरा को छोड़कर ऋतिक परंपरा लेते हैं किंतु ऋतिक परमार्थ से संबंध कुछ नहीं है. ऋतिक में परमार्थ का कोई भी संबंध नहीं है. वो केवल जगह कराएंगे दक्षिणा ले लेंगे और चले जाएंगे. गुरु परंपरा कृष्ण से ब्रह्मा ब्रह्मा से नारद नारद से व्यास व्यास से सुखदेव गोस्वामी इसके बाद में मध्वाचार्य मध्वाचार्य से होते हुए ईश्वरपुरी पाद माधवेंद्रपुरी पाद और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन इत्यादि सर्वस्वामी नरोत्तम ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर और आज तक की परंपरा से वही आ रही है धारा। यदि दीक्षा परंपरा गुरु परंपरा की धारा न हो तो उसे भगवत भजन भक्ति कभी नहीं आ सकती। उन्हीं चार संप्रदायों में से रामर्षि संप्रदाय से रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी से
वल्लभाचार्य
इत्यादि और चतुचंद से
निम्बादित्य
इत्यादि संप्रदायें आई और गुरु परंपरा से वही तत्व ज्ञान मिलता है। दीक्षा होती है, दीक्षा से होता है दिव्य ज्ञान। कृष्ण के साथ में हमारा जीवों का क्या संबंध है, गुरु देते हैं रितों का, इसलिए इस संबंध में परमात्मा से कोई संबंध नहीं। यदि वो गुरु परंपरा नहीं मानते हैं तो यह भक्ति का विरोधी है। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
कंसलेशन
कृष्ण।